सुधीजनों देवियों, सत्यात प्रकाश के आज 17th सीजन है, 17वां भाग चल रहा है, चैप्टर 3 का। और पिछली बार जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम किसी चीज को विश्वास करते हैं या विश्वास कराते हैं, जिस चीज को हम मानते हैं या मनवाते हैं, उसको परखने के लिए 5 तरह के द वे ऑफ एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा हमें परखनी चाहिए कि वो सच है कि झूठ है कि नहीं है। पहली बात बताई कि जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, अगर उसके विपरीत उसका उल्टा कोई आपको बताता है बा आप ऐसा किसी को बताते हैं तो वो गलत है। दूसरा, जो प्रकृति का जो नियम है, जो नेचुरल लॉज है, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो भी वो गलत है। जैसे कोई कहे कि अमुक व्यक्ति बिना माँ बाप के पैदा हुआ, वो क्योंकि ये प्रकृति में असंभव है। तीसरा, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वचन हैं, वेद हैं, उनके अनुकूल वचन हो। चौथा, जो समाज में बड़े ज्ञानी आप्त पुरुष हैं, आप्त का मतलब होता है रिलायबल पर्सन, ज्ञानी लोग भी तो बिकते हैं। हमारे साइंस में देखिए, ये अमेरिका में बार बार हम बात को उठाते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की परेशानी सारी दुनिया के लोगों को परेशान है। अब यहाँ पूरे की पूरा का पूरा एक ग्रुप है साइंटिस्ट का जो कि खरीदे गए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, जो वो इस बात साबित करने के लिए लगे हुए हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग जस्ट एक फॉल्स प्रोक्लेमेशन है कि लोग हल्ला मचाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को उसे नुकसान होगा, तो वो हर जगह ज्ञानी लोगों का। तो इसीलिए शास्त्र कहता है ज्ञानी नहीं, रिलायबल पर्सन हो, आप्त पुरुष। और उसका चरित्र हमने पिछले बार चर्चा की, जो खुद के लिए नहीं, जो समाज के लिए सोचता हो, जो ज्ञानी भी हो, जो समाज के लिए सोचता हो, जिसमें स्वार्थ पर भावना ना हो, जिससे खुद को कुछ फायदा ना होता हो, ऐसा व्यक्ति को हम आप्त पुरुष मान सकते हैं। उसके चरित्र से भी हम सीख सकते हैं। और चौथा था, हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारी अपनी अंदर की आवाज है, उसको भी परखना चाहिए, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो ये जानने के लिए कि मैं जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, वो गलत है कि सही है। तो हमारे अपने अंदर से भी एक आवाज होती है जो हमें ये बताता है कि ये सही है कि गलत है। और वो आवाज का कोई आवाज नहीं होता, उसको सिर्फ हम फील करते हैं। जब आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जब आपको कोई गिल्टी फीलिंग होती है या आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, तो इसका मतलब अंदर से वो आवाज आपको देता है कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है कि बुरा है। जब भी मैं किसी से लड़ता हूं, जब भी मैं झूठ बोलता हूं, जब भी मैं कोई बुरा काम करता हूं, सामने वाले को कोई तकलीफ होता है नहीं होता है, मेरे अंदर मुझे वो खा जाता है, तो ये आवाज होता है कि ये गलत है। और जो पांचवा है कि 8 तरह की ज्ञान की जो सोर्सेस हैं, उनमें से कौन से सोर्स के द्वारा वो बात सच है या झूठ है ये साबित होता है। ये जो 8 तरह के सोर्स ऑफ नॉलेजेस हैं, उनकी चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे, आगे चलेंगे। जैसे प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, उपमान एनालॉजी, शब्द जो वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थापत्ति पोस्टुलेशन, ऐतिह हिस्ट्री, संभव प्रोबेबिलिटी, अभाव नेगेशन। अलग अलग हमारे शास्त्रों में, अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी में, अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग संख्याओं के सोर्स ऑफ नॉलेज माने गए हैं। किसी ने सिर्फ 3 माना, किसी ने 4 माना, किसी ने 1 माना, किसी ने 2 माना, किसी ने 8 माना है। तो स्वामी जी ने सारी जितने भी मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, सबको स्वामी जी ने कोट किया कि जब हम कोई सत्य और असत्य, सच या झूठ का परख करें, तो जरूर वो जो 4 हमने बताया उसके बाल अलावा ये जो पांचवा है, इनमें से हर एक के द्वारा हम उसको थोड़ा एग्जामिन करें। अगली स्लाइड है। उनमें से पहला है प्रत्यक्ष, जो हम पिछली बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये जितने भी हम आपको इसकी जो लक्षण बताएंगे वो सारे न्याय दर्शन के कोटेशन हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, इसकी चर्चा भी हमने की थी। नेक्स्ट स्लाइड। इसका सामान्य अर्थ था कि प्रत्यक्ष या जो डायरेक्ट परसेप्शन उसको कहते हैं, जो ज्ञान इंद्रियों का, इंद्रिय मतलब जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियों के साथ किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का जब मिलना होता है, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, तो ये जो देखने से जो ज्ञान आपको हुआ इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आपकी आंख ने मुझे ये जो मैं रूपक जो वस्तु है उसको देखा, मैं अगर इस चश्मा को देखता हूं, ये चश्मा वस्तु है, मेरी आंख जब इससे मिलता है तो मुझे जो ज्ञान होता है, पर आंख मिलने से ही केवल ज्ञान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी आंख ठीक भी हो और चश्मा भी यहीं पर रखा हुआ हो तो भी मैं चश्मा नहीं देख सकता अगर मेरा मन मेरे आंख के साथ ना दे। कभी कभी आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे, जो चश्मा पहनने वाले लोग हैं, चश्मा उनका यहीं पर होता है, चश्मा उनका यहीं पर होता है, चश्मा सामने होता है तो भी घंटों ढूंढते रहते हैं। आपके सामने वस्तु पड़ा होता है तो भी आपकी आंख भी उस पर जाता है पर आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपका मन आपके साथ नहीं देता। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वस्तु भी है, आपकी आंखें भी ठीक है और आंखें पेड़ को देख भी रहा है आप, पर आपका मन साथ, आपका मन अगर और कहीं है तो भी पेड़ नहीं दिखता है, और अगर आपका मन भी ठीक है, वो आंख के साथ है, आंख उस पेड़ को देख भी रहा है, उसके बावजूद भी पेड़ आपको नहीं दिखेगा अगर आपका दिमाग खराब है, बुद्धि खराब है। हो सकता है पेड़ आपको भूत की तरह दिखे। बहुत सारे लोगों को इसकी चर्चा भी हम पिछले बार कर चुके हैं कि जो जिस तरह के अपने इंटेलेक्ट को कल्टीवेट किया है, जिस तरह की बुद्धि को उसने बनाया है, उसको वैसा ही दिखता। दुनिया में बहुत सारे चीजें वैसी नहीं दिखते हैं जैसा होते हैं। और क्यों नहीं दिखते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि जैसा हमने परसेप्शन बनाया अपने माइंड में, ये जो हमारा इंटेलेक्ट उसको उसी तरह का डिस्क्रिमिनेट करता है। ये भूत प्रेत भी इन्हीं में से एक है। हम खूंटा को देख करके, सूखा पेड़ को देखकर भी कुछ लोगों को भूत लगता है और कुछ लोगों को वो पेड़ ही दिखता है। किसी को वो छाया दिखता है तो किसी को वो भूत दिखता है। ये क्या है? ये हमारी बुद्धि की गड़बड़ी है। इसीलिए जब भी कोई भूत प्रेत दिखे या कोई देखता हुआ बोले, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल जरूर लेना चाहिए, और यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद उसको नहीं दिखेगा। तो हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां और वस्तु, ये चारों जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो हमें जो ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान भी बहुत सारे समय गलत होता है। क्यों? जब तीन उसके लिए शर्तें हैं तो वो तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। नंबर वन, अगली स्लाइड है, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन इन दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं अव्यवहित। मेरी आंखें ठीक है, मेरा मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, पर तब भी, और पेड़ भी है, इस दीवार के उस तरफ पेड़ है तो भी वो पेड़ मुझे नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पेड़ नहीं है, पेड़ भी है, मेरा आंख भी ठीक है, मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, पर प्रॉब्लम है कि पेड़ और मेरे आंखों के बीच में ये दीवार है, ये इंटरप्ट करता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बुद्धि, मन, इंद्रियां और जो वस्तु है ये चारों रिलेटेड हो, पर बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई दीवार ना हो, कोई पर्दा ना हो, वो किसी भी तरह का कोई बाधा ना हो, तभी प्रत्यक्ष होता है। नंबर टू, वो अव्यभिचारी होनी चाहिए। अगर अभी आपको ये पेड़ दिखता है, शाम को ये आपको खूंटा दिखता है, सुबह ये आपको इंसान दिखता है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है। वो नॉलेज नॉलेज नहीं है, वो गड़बड़ है। अगर आपको 24 घंटे जब भी आप उस पेड़ को देखते हो आपको पेड़ ही दिखता है तो यकीन मानिए वो पेड़ ही होगा। पर अगर आपके ज्ञान बदल रहा है तो वो फिर पेड़ नहीं, या आपके देखने के अंदाज में कहीं कोई गड़बड़ी है। दुनिया में इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हमारा ज्ञान बार बार बदलता है। अगर किसी वस्तु पर आपका ज्ञान बदल रहा है तो आपका गलत ज्ञान है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इसको कहते हैं अव्यभिचारी। तीसरा है इट शुड बी कन्विंसिंग। ये इसको संस्कृत में जो लाइन है व्यवसायात्मकम, और वो निश्चित ज्ञान होना चाहिए, ये पक्का होना चाहिए कि ये यही है। ये नहीं कि आज आप मानते हैं कल आप मुकर जाते हैं। तो नियम है प्रत्यक्ष ज्ञान का कि जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, इंद्रिय और वस्तु के बीच में कोई व्यवधान ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। दूसरी चीज है कि वो जो वस्तु का ज्ञान है वो बार बार बदले नहीं। तीसरी है कि वो फाइनल हो। इस तरह के जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमारे जीवन में जो पहला ज्ञान हमें जब भी होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अगली है, अगली स्लाइड करें, अनुमान। अनुमान का मतलब होता है जो ज्ञान बाद में होता है, पीछे होता है, जिसको कहते हैं इन्फरेंस। ये इन्फरेंस क्या है तो न्याय दर्शन का ये डेफिनेशन की जो कोटेशन है, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववच्च शेषवच्च सामान्यतो दृष्टम च। अनुमान इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज दैट कॉजेस इनडायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू इन्फरेंस। ये कैसे देखिएगा, दुनिया में हमें, हमारे जिंदगी में ज्यादातर जो हमें ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष सेवा देखा हुआ ज्ञान नहीं होता, वह सुना हुआ ज्ञान नहीं होता, वो इन्फरेंस से आता है। जब काले बादल मंडराते हैं, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है और आकाश दिखता नहीं है, पूरे काले बादल चारों तरफ घिर जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बारिश होगी। ये ज्ञान सच है। ये आपको कैसे पता चला कि बारिश अभी होने वाली है? काले बादल का चारों तरफ ढक जाना, अंधेरा हो जाना, ये हमेशा बारिश से पहले होती है। जब जब बारिश होती है तो कभी भी सफेद बादल ढक करके बारिश नहीं होती है। नंबर टू, काले बादल होने पर भी बारिश नहीं होगी अगर काले बादल टूटे हुए हो, टुकड़े टुकड़े हो, अलग अलग हो, तो भी बारिश नहीं होगी। काले बादल होना जरूरी है, काले बादल पूरे आपके आसपास के आकाश को ढक देना जरूरी है, तभी आप ये इन्फरेंस करते हैं कि आज बारिश होगी बा अभी बारिश होगी। ये जो ज्ञान होता है ये तभी होता है जब काले बादल के ढकने और बारिश के बारे में जब आपने बार बार देखा और इस कंक्लूजन पर आप पहुंचे कि जब भी काला बादल होता है, बादल नीचे होता है, चारों तरफ आकाश ढक जाता है, तो बारिश की चांस बहुत होती है। ये जो एक परमानेंट रिलेशन है काले बादल के ढकने और बारिश के साथ, ये रिलेशन का ज्ञान जिसको होता है वो कहीं भी बोल सकता है कि बारिश होती है या कभी होगी या नहीं होगी। आपने एक जगह धुआं देखा और आप चिल्लाने लगे कि वहां आग लगा है, क्यों? ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि जब भी धुआं होता है वहां आग होता है। जहां जहां धुआं होता है आपने देखा, वो रसोई घर हो, वो किसी कहीं लकड़ी जल रही हो, कहीं भी हो, जहां जहां धुआं होता है वहां आग ही होता है। बिना आग के धुआं होता नहीं है। धुआं के साथ आग का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को जिसने जाना, प्रत्यक्ष किया, और एक दिन दोनों में से एक दिखाई दिया, धुआं दिखाई दिया, तो आग का ज्ञान अपने आप हो जाता है। पर ध्यान रखिए, आग को देख करके धुआं का ज्ञान नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जहां जहां आग जले वहां वहां धुआं होगा, क्योंकि ऐसा आप अपने रियल लाइफ में नहीं देखते हैं। जब आप गैस में खाना बनाते हैं तो धुआं नहीं होता है, जब आप हीटर जलता है तो धुआं नहीं होता है, जब आपके बल्ब जलते हैं तो धुआं नहीं होता है, तो बहुत सारे जगह आग होते हैं धुआं नहीं होता है। तो आपका क्या कंक्लूजन है? आग होने पर धुआं नहीं होता, हर आग में धुआं नहीं होता है, पर अगर धुआं है तो आग जरूर होता है। ये जो आपने जाना और इसको इनका जो परमानेंट रिलेशन को जाना, ये दिमाग में जब होता है, जब आप धुआं देख करके आग का ज्ञान करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपको ये जरूर पक्का पता होता है कि इसके कोई पेरेंट्स होंगे, मां बाप होंगे। अब वो जिंदा है नहीं है, साथ में है नहीं है, वो मायने नहीं रखता। मतलब उसके मां बाप जरूर होंगे। कैसे पता चला कि ये जो भी व्यक्ति है उसकी मां बाप जरूर होंगे? क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति को आज तक नहीं देखा व नहीं सुना जो बिना मां बाप के हुआ हो। अगर व्यक्ति है तो उसके मां बाप हैं। आप उसके मां बाप को देखो या ना देखो, जानो या ना जानो, पर ये आपका कंफर्म्ड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, कि उसके मां बाप हैं। वो बिना मां बाप के पैदा नहीं हुआ है। दुनिया में ज्यादातर ज्ञान हमारा इसी तरह का होता है। पूरी की पूरी जो साइंस है वो इस इंफरेंस नॉलेज ऑफ इंफरेंस पर टिका होता है। वो दो वस्तु के परमानेंट रिलेशन के आधार पर, वो जो आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी पूरा जो आधार है वो इंफरेंस होता है। दो वस्तु के रिलेशन के पता लगने के बाद वो उससे रिलेटेड नई नई चीजें निकालते हैं। जब भी आप पत्थर ऊपर फेंकते हो नीचे गिरता है, आपको कैसे पता कि पत्थर ऊपर फेंको तो नीचे गिरेगा? क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड रूल है कि धरती में ग्रेविटेशन है और जो भी भारी चीज आप फेंको वो नीचे आता है। और इसके आधार पर आपके साइंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट बने इसी रूल ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर। ये क्या है? ये रूल ऑफ इंफरेंस है। ईश्वर है किसी ने तो देखा नहीं, क्योंकि ना आंखों से दिखता है ना कानों से सुनाई देता है। कैसे हमें पता चला व कैसे दुनिया में ईश्वर है इस बात को हम माने? ईश्वर को मानने के लिए जो बहुत सारे प्रमाण है उनमें से एक भी ये इंफरेंस है, अनुमान प्रमाण। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में जो भी वस्तु बनता है, जो भी इफेक्ट्स हैं, जो कुछ वस्तु है उसका कोई कॉज है। कोई भी इफेक्ट बिना कॉज के नहीं होता है। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। एक सुई भी बनती है, छोटी सी सुई भी बनती है, वो दो चीजों से बनती है, दो चीजों के कारण से। एक तो उसका जो मेटेरियल कॉज है वो लोहा है या किसी से भी बनता है। दूसरा, बनाने वाला कोई मैकेनिक है, कोई मिस्त्री है, कोई व्यक्ति है। हो सकता है वो मशीन से बनता हो, कंप्यूटर के ऑन करने से बनता हो, पर उस मशीन को चलाने वाला, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कोई चेतन होता है, कोई कॉन्शियस होता है, कोई प्राणी होता है। दो चीजों के बिना सुई नहीं बन सकती। एक तो इंसान या कोई प्राणी, जरूरी नहीं इंसान, कोई बंदर भी स्विच ऑन कर दे तो भी मशीन चलेगी, पर बंदर जिंदा होना जरूरी है, एक कॉन्शियस, एक प्राणी होना जरूरी है। और जो उसके जो, जिसको आप कहते हैं रॉ मेटेरियल, जिससे वो सुई बनती है, आप कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े के पीछे कुछ रॉ मेटेरियल है, धागा है, कारपास है, और बनाने वाला एक व्यक्ति है। ये सारी दुनिया को आप इसी तरह देखेंगे। कोई कहीं भी कुछ बना है उसका कोई रॉ मेटेरियल है, कोई मेटेरियल कॉज है, दूसरा कोई जनरल कॉज है जिसके कारण से ये दुनिया बनती है। तो अगर छोटी से छोटी चीज को बनाने के लिए किसी चेतन की जरूरत है, तो ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड बना, वो भी इतना वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल रूल्ड है, उसके हर रूल बिल्कुल फिक्स्ड है, इंसान के रूल्स बिगड़ जाते हैं। कभी कभी हम बड़ी पूरी सावधानी से कितने सालों लग करके सारी चीजों को ठीक बनाते हैं, लास्ट मोमेंट में काम नहीं करता, पर दुनिया में जो भी रूल्स है वो कभी आपको धोखा नहीं देते। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वो हमेशा लागू होता है, ऐसा नहीं है कि एक पत्थर गिरता है एक पत्थर नहीं गिरता। आग अगर गर्म है तो गर्म है, कभी गलती से आप आग लेकर आ रहे हो आपको ठंडा आग नहीं मिलेगा। अगर सूरज, तारे, ग्रह, प्लैनेट्स, स्टार्स, सोलर सिस्टम ये मूव करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई प्लैनेट नहीं मिलेगा, स्टार नहीं मिलेगा जो खड़े हैं, बिल्कुल एक जगह पर टिके हुए हैं, नहीं मिलेगा। ये जो इतना खूबसूरत सिस्टम है और इतना वेल थॉट है, इतना सुविचारित है, ये ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं है, तो जरूर इसके पीछे दो चीजें होती है। नंबर एक, वो जो दुनिया की जो रॉ मेटेरियल है, जिसको जिसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, जिसके हम कहते हैं नेच प्रकृति। दूसरा, कोई चेतन है जो इस विशाल ब्रह्मांड को बनाता है, कंट्रोल करता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जैसे हमारा शरीर दो चीजों से बना है, एक तो रॉ मेटेरियल है, इसमें हड्डी है, मांस है, खून है, सेल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण यह शरीर है। ये गड़बड़ हो जाए तो भी शरीर काम नहीं करता, पर ये सब कुछ ठीक हो तो भी आपकी ग्रो नहीं होगा, आप बढ़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, अगर उसके अंदर एक कॉन्शसनेस, एक चेतना, एक आत्मा ना हो, तो डेड बॉडी सड़ जाएगा थोड़ी देर में, कुछ उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड ये शरीर की तरह है, बड़ा एक्टिव है, तो कोई ना कोई बैकग्राउंड में अंदर है, चेतना की तरह आत्मा है, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। ये कैसे हम ईश्वर है ये ज्ञान हमें होता है इस इन्फरेंस, लॉ ऑफ इन्फरेंस से, अनुमान प्रमाण से। हमारे घर में, हमारे रोज के जीवन में, हमारे कार्यालय में, हमारे घर में ज्यादातर जो हमें ज्ञान होता है इसी से होता है। कोई आदमी दुखी बैठा है, मुंह लटका के बैठा है, तो आप पूछ लेते हो क्या हुआ, कोई समस्या है। कैसे आपको पता चला कि कोई समस्या है? क्योंकि जब भी कोई समस्या होता है तभी मुंह लटकता है, खुशी से कोई मुंह लटका कर नहीं बैठता है। तो ये जो रिलेशन है कि परेशानी होने पर ही मुंह लटकता है, ये रिलेशन बड़ा परमानेंट है, सिवाय जो एक्टर हैं उनको छोड़ दे तो, मतलब जो एक्टिंग करते हैं उनको छोड़ दे तो। कभी कभी हम रियल लाइफ में भी, बहुत सारे हमारे बच्चे भी कभी कभी नाटक कर लेते हैं, जहां हमारा ये जो लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस काम नहीं करता, मतलब वो दुखी ना भी हो मुंह लटकाते हैं, जिससे कुछ बार्गेनिंग करना हो कुछ हो। पर ओवरऑल ये वही रूल होता है कि भाई आप कोई दुख, मुंह किसी का सूखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि दुखी है, बड़ा खिला खिला मुंह है तो आप पूछ लेते हैं क्या बात है, कुछ अच्छी बात हुई है। तो ये सारा हमारा अनुमान प्रमाण है। ये अनुमान प्रमाण जो है, अगली स्लाइड है, ये तीन तरह की होती हैं। थोड़ा हो सकता है आज का विषय आपको थोड़ा सा हैवी लगे, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, पर ये अच्छा है कि आपको कुछ नॉलेज, कुछ अच्छी फिलोसॉफिकल बातें सीखने को मिलेगी, तो आप शिकायत नहीं करना। अगले जो ये जो अनुमान प्रमाण है वो तीन तरह के है। एक है, संस्कृत में उसको कहते हैं पूर्ववत, शेषवत, सामान्यत दृष्ट। पूर्ववत का अंग्रेजी है इन्फरेंस फॉरवर्ड, मतलब जहां पर आप इन्फरेंस ऑफ द इफेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इट्स कॉज, जब कारण देख के आप कार्य का पता लगाते हैं। जैसे कहीं अगर जंगल में आग लगा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि ये जंगल थोड़ी देर के बाद राख हो जाएगा, क्योंकि आग कारण है जंगल को राख बनाने में। अगर आपने जंगल में लगा हुआ आग को देखा, आप ये समझ जाते हैं कि कल आप अगर आएंगे तो वहां राख ही मिलेगा, पेड़ नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा बड़े भी हमेशा बच्चों को ही क्यों एग्जाम्पल दे, बड़े कौन से सुधरे हुए होते हैं सारे, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको बिल्कुल समाज का कोई भी रूल फॉलो करने के मूड में नहीं है तो आप समझ जाते हैं कि आगे जाकर के बर्बाद होने वाला है। क्योंकि ऐसा जब भी कोई व्यक्ति सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता हमेशा वो बिगड़ा हुआ ही मिलता है। ये कॉज को देख करके इफेक्ट का जो इन्फरेंस करते हैं, कारण को देखकर कार्य का जो अनुमान करते हैं, उसे हम कहते हैं ये अनुमान का एक तरीका। एक बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, रोज 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, खूब रिसर्च कर रहा है, खूब पूछताछ कर रहा है, टीचर से सवाल जवाब करता है, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कि आगे जाकर बड़ा ज्ञानी बनेगा, भाई उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। कैसे पता चला कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा? कभी कभी तो बहुत पढ़ने पर भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मार्किंग सिस्टम का अपना एक सिस्टम है, वो नॉलेज को असेस नहीं करता है, वो आपकी एग्जामिनेशन की टेक्निक को असेस करता है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो अपने क्लास एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं, क्योंकि रिजल्ट लाने की अपनी प्रक्रिया है। पर यह पक्का है कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ता है, बहुत पूछता है, सवाल जवाब करता है, तो ये पक्का अनुमान है कि एक ज्ञानी बनेगा। कैसे पता चला? क्योंकि ज्ञानी बनने का जो कारण है वो यही है कि पढ़ना लिखना और पूछताछ करना। पूछना बड़ी जरूरी है, खाली पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बनता जब तक वो अपने क्यूरियोसिटी को किसी को पूछ के शांत नहीं करता। इसलिए पूछिए जरूर, पूछने में कभी संकोच मत करिएगा। अगला है अनुमान प्रमाण है शेषवत, मतलब जहां आप उल्टा ज्ञान करते हैं, जहां आप रिजल्ट को देख करके, इफेक्ट को देख करके कॉज का आप अनुमान लगाते हैं। जैसे बच्चे को देख करके उसकी मां बाप हो इसका कल्पना करते हैं, जला हुआ घर देख करके आप अनुमान करते हैं कि यहां आग लगा था, जब आप सुबह उठते हैं रोड पर पानी हो, आपके बगीचे में पानी हो, तो आप समझ जाते हैं कि रात को बारिश हुई थी। बच्चा जब रो रहा होता है आप समझ जाते हैं कि इसको भूख लग रहा है, या खाना खाने के बाद भी रो रहा है तो उसको कुछ अनकंफर्टेबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये कार्य देख के कारण का आप अनुमान करते हैं। तीसरा अनुमान होता है, इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट, इन्फरेंस बाय एनालॉजी। इन दिस द डैटम एंड द पार्ट इन्फर्ड आर नॉट रिलेटेड एज कॉज एंड इफेक्ट बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्कमिटेंस। ये जो तीसरा किस्म का है ये खास करके साइंस में यूज होता है, या फिलोसॉफिकल जो जजमेंट्स होते हैं, जो डिसीशंस लिए जाते हैं, उसके लिए ये वाली जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान का यूज किया जाता है। ये क्या है? जैसे हमने कहा कि ईश्वर है, क्यों? ये एनालॉजी है, उपमान है, कि जब भी कोई कार्य दिखता है, कोई वस्तु दिखता है, कोई चीज बना हुआ दिखता है, उसके पीछे दो कारण जरूर होना जरूरी है। एक तो कोई वस्तु हो जो रॉ मेटेरियल हो, और दूसरा उसको बनाने वाला कोई प्राणी हो। हम सब भी पैदा हुए हैं, हमारे अपने रॉ मेटेरियल है हम जिससे बने हैं, पर हमें बनाने वाले भी कुछ मां बाप हैं जो जीवित हैं। ईंट भी बनता है, मिट्टी से बनता है, पर बनाने वाला एक प्राणी होता है। इसी तरह यह संसार जो है, यह एनालॉजी है, आप उसको उपमा करते हैं कॉमन सेंस से। ये संसार अगर है तो इसके पीछे रॉ मेटेरियल तो दिखता है कि हवा है, पानी है, आकाश है, आग है वगैरह वगैरह, एनर्जी है एक्सेट्रा, पर इसके पीछे कोई जरूर चेतना होगी जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो इस तरह के जो ज्यादातर जो वैज्ञानिक या दार्शनिक ज्ञान होते हैं वो इन्फरेंस बाय एनालॉजी से होता है, उसको सामान्यतः दृष्टो कहते हैं। अगली स्लाइड पर चलेंगे। अगला जो प्रमाण है, प्रमाण मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, उसको कहते हैं हम उपमा। कुछ ज्ञान हमें डायरेक्ट इन्फरेंस, डायरेक्ट परसेप्शन से नहीं होता, प्रत्यक्ष से या इन्फरेंस या अनुमान प्रमाण से भी नहीं होता। उसको जानने के लिए हम एक दूसरी तरह के सोर्स का मदद लेते हैं, उसको कहते हैं उपमान, एनालॉजी। इसको संस्कृत में जो न्याय दर्शन में इसकी परिभाषा है, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। मतलब जब कोई दो चीजों का बहुत, एक दो चीजों की जो 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 तुलना है, जो एक जैसा दिखता है, उसमें से एक को देखकर दूसरे को जानने की जो प्रक्रिया है। जैसे आप एक बार जंगल गए घूमने के लिए, हिमालय गए या किसी पहाड़ी जंगल में गए, आपसे पहले कोई हिमालय गया हुआ था, जंगल गया हुआ था, आपको उसने बोला कि आप जब जाओगे तो वहां एक जानवर देखकर आना, उसका नाम है गबय, मतलब वाइल्ड काउ, एक जंगली गाय है, अब देखकर आना। उस पशु का नाम है गबय। उसने पूछा मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूं कि गबय कौन है, मतलब वो गाय जैसा दिखेगी पर वो जंगली है। तो आप जंगल में गए, बहुत सारे एनिमल्स को, प्राणियों को देखा, पर उनमें से एक ऐसी प्राणी को देखा जो बिल्कुल गाय जैसे दिखती है पर वो हिमालय जंगल में दिखता है, तो आप समझ गए कि इसी का नाम गवय है जो मुझे मेरे दोस्त ने कहा था। इस तरह के जीवन में बहुत सारी घटनाएं जब हम कंपेयर करके जानने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादातर होता है जब मुझे नाम पता है, मुझे किसी वस्तु व्यक्ति को ढूंढना है। मैंने आपको कहा आप बाजार जा रहे हैं, किसी शहर जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति से मिलकर आइए, तो आप मुझे पूछेंगे मैं कैसे पहचानूं वो व्यक्ति कैसा है, तो मैं आपको एक नक्शा बताऊंगा, एक चित्र बताऊंगा, उसके तरह होगा, उसके तरह होगा, उसके तरह होगा। जब आप उसके तरह, ये एनालॉजी का यही सिस्टम होता है, जाकर उस वस्तु को आप पहचानते हैं, उपमान है, पर ये ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं होता है। अगला है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ होता है वर्बल टेस्टिमोनी, संस्कृत में बोलते हैं आप्तोपदेश शब्द। शब्द मतलब वर्ड्स, वर्ड्स को सुनकर या देख करके बिलीव करना, मानना कि ये चीज है या नहीं है। ये दो तरह के शब्द होते हैं, या तो कोई व्यक्ति बोलता है या कोई किताब पढ़ के हम जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि अमेरिका पहले गुलाम था, ब्रिटिश लोगों के द्वारा ये गुलाम था, कि भारत ब्रिटिश के द्वारा गुलाम था? आपको कैसे पता चला कि जो जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो आजादी की लड़ाई के समय नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे, कि भारत में बहुत सारे लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान दी, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, कैसे पता चला? हमने ये देखा नहीं, सुना नहीं, हमने ये किताबों से पढ़ी या किसी टीचर से, पेरेंट से या किसी वाइज मैन से, पढ़े लिखे व्यक्ति से हमने सुना और हमें पता चला कि भारत कभी गुलाम था, भारत को आजाद करने के लिए ये चीजें हुई। हमें कैसे पता चला कि राम एक राजा थे और जिनकी पत्नी का नाम सीता है, वगैरह वगैरह। कृष्ण के बारे में क्या सोर्स है जानने के लिए? राम कृष्ण के बारे में आपके पास एक ही सोर्स है कि या तो आप महाभारत रामायण को के द्वारा ही जान पाएंगे, या आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे जो महाभारत रामायण पढ़े हैं। इस तरह के जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उनको जानने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, हम कोई रिलायबल बुक पढ़ें या किसी रिलायबल पर्सन से जाने। पर यह शब्द प्रमाण बड़ा खतरनाक भी है। खतरनाक इस सेंस में है कि गलत व्यक्ति से जाना, गलत किताब पढ़ के जाना तो भी बड़ा बवंडर होता है। अब जैसे रिलायबल बुक है, हमारे जो धर्म है, जो जो जो, जो रिलीजियन है, हिंदू धर्म है, अब यहां इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है कि हर व्यक्ति का अपना रिलीजियस डेमोक्रेसी है, बाकी रिलीजन में तो चलो शुक्र है कि भाई किसी का एक ग्रंथ है, कोई व्यक्ति है। अब यहां तो कल एक बाबा पैदा हो जाएंगे, वो एक एक किताब को फेमस कर देंगे, अब वही हो गया प्रमाण। भाई तुम्हारा क्या धर्म ग्रंथ है जो हमारे लिए तो ये गरुड़ पुराण जो है वो प्रमाण है। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है जी? गीता है। कुछ लोगों के लिए गीता नहीं है, वो है कि गीता अज इट इज, प्रभुपाद के द्वारा रचित गीता ही प्रमाण है, बाकी गीता फॉल्स है। अब किसी के लिए वेद प्रमाण है, किसके लिए उपनिषद प्रमाण है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में क्लियर किया कि जो शास्त्र या जो व्यक्ति ट्रस्टवर्थी हो, विश्वास के लायक हो, रिलायबल हो, रिलायबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, जिसकी कोई भी बात गलत ना हो, जो बोला गया वो ईश्वर का गुण धर्म कर्म प्रकृति का जो 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 लॉज है, लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ ना हो, हमेशा शब्द प्रमाण को वेरीफाई करना जरूरी होता है। किसी किताब से पढ़े या किसी किसी व्यक्ति से सुने कि जो बाकी चार प्रमाण हमें बताया गया, ईश्वर के गुण धर्म के अनुकूल है कि नहीं, प्रकृति लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े ग्रेट पर्सन्स हुए ह्यूमैनिटेरियन, उनके चरित्र के हिसाब को मैच करता है कि नहीं, और मेरा जो अपना कन्विक्शन है उसको वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जब किसी शास्त्र में लिखा है किसी मंदिर में किसी देवी मां के सामने बकरी को काटने से, बलि चढ़ाने से पुण्य मिलता है, ये सब हम इसीलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है, इसको पढ़ते समय एक्सेप्ट करते समय ये तीन चार चीजें देख लेना जरूरी है। क्या ईश्वर के गुण कर्म धर्म के अनुकूल है, मतलब ईश्वर क्या इतना चमचाखोर है कि उसको कुछ रिश्वत देने पर खुश होता है, वो भी किसी प्राणी की कत्ल करने पर, नंबर वन। नंबर टू, क्या लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग है कि किसी को मारने पर कोई कोई दूसरा खुश होता है। नंबर थ्री, क्या मेरी अंतरात्मा जब मैं किसी को बलि चढ़ाता हूं मेरी अंतरात्मा में कोई दर्द नहीं होता है। कम से कम ये तीन प्रमाण आपको प्रूव करते हैं कि अगर जिन भी शास्त्र में लिखा है और हमारे लोग इसको मानते हैं वो गलत है, तो ऐसे शास्त्रों को रिजेक्ट करने की जरूरत है। तो जिसको भी कोई गुरु अगर आपको कहता है, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि तुलसी में पानी देने से आपको ये फायदा होगा, दिवाली की लक्ष्मी मूर्ति पूजने से आपके घर में धन वर्षा होगा, क्या ये लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग है, क्या हम परिश्रम किए बिना पैसा कमाए बिना घर में लक्ष्मी पूजने से धन आता है? नहीं आता है। क्या आपकी अंदर आत्मा मानती है कि मैं ईश्वर को भाई किसी देवी देवता को पूजूं तो मुझे धन मिलेगा? नहीं मानता आपका मन, आपका मन भी नहीं मानता, आप डाउट में होते हैं, तब भी करते हैं क्योंकि किसी शास्त्र में लिखा है, किसी गुरु ने कहा है, तो ये गलत है, ये रिलायबल नहीं है। हमारे एक व्यक्ति कहा करते थे, गुरु कि आपको चींटी काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो, उसके बाद भी कहते हो नहीं दर्द नहीं होता क्योंकि वेद में लिखा है कि चींटी काटने से दर्द नहीं होता, आप चिल्ला रहे हो कि आ मर गया मर गया, फिर भी कहते हो दर्द नहीं होता क्योंकि शास्त्र में लिखा है दर्द नहीं होता। तो जो शब्द प्रमाण है इसको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की बात है। जो पहले चार प्रमाण हमने बताया कि ईश्वर के गुण कर्म धर्म के अनुकूल है कि नहीं, प्रकृति के नियम के अनुकूल है कि नहीं, आपकी आत्मा आपकी जमीर उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, बड़े महापुरुषों का चरित्र उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, अगर नहीं है उस शब्द प्रमाण को, उस शास्त्र वचन को या उस गुरु आचार्य स्वामी जी के वचन को रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह हमने आज ये चार प्रमाणों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम कुछ और डिस्कशन करेंगे, अब समय हो चुका है, आरती करेंगे। आज